त्रिशा ने जब देखा कि पूरा रावत परिवार उसके खिलाफ हो चुका था, यहाँ तक कि जानवी भी, तो उसने अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाईं। हॉल में सोफे के बीच एक कांच की टेबल रखी हुई थी, जिस पर एक छोटी सी फ्रूट बास्केट थी और उस पर चाकू रखा हुआ था। त्रिशा ने लपकते हुए उस चाकू को अपने हाथ में ले लिया, पर अगले ही पल उसने वो चाकू जानवी की तरफ फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चाकू लगने के डर से जानवी ने जल्दी से अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया, पर वो चाकू जानवी को छू पाता उससे पहले ही अमर ने उसे कैच कर लिया। अमर की हथेली से हल्का खून बहने लगा था। वहीं अमर की लाल नज़रें अब त्रिशा के चेहरे पर टिकी थीं। समर्थ भी अमर से अलग हुआ और हैरानी से त्रिशा की तरफ देखा, और अगले ही पल गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ त्रिशा के गाल पर चढ़ते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम उससे भी ज्यादा गिरी हुई लड़की हो, जितना मैंने तुम्हें समझा था। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। समर्थ का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, साथ में उसका शरीर भी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, जैसे वो त्रिशा को डांट लगाने में अपने शरीर की सारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो। अमर ने अपने गुस्से का घूंट पिया और अपने हाथ से वो चाकू नीचे गिराते हुए समर्थ का हाथ पकड़ लिया। वो उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां पुलिस आ गई। एक इंस्पेक्टर था और उसके साथ दो फीमेल कांस्टेबल थीं। उनके आते ही त्रिशा लगभग दौड़ते हुए समर्थ के पास आई और अगले ही पल उससे गले लगते हुए बोली, प्लीज समर्थ, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, आई प्रॉमिस सुधर जाऊंगी, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उसकी ये रोती आवाज सुनकर समर्थ का कलेजा फट रहा था। उसका दिल जैसे मचल रहा था त्रिशा को कसकर अपनी बाहों में भरने के लिए, पर चाहकर भी वो ये सब कर नहीं पा रहा था। उसने आंखें बंद करके आखिरी बार त्रिशा की उस खुशबू को अपने जहन में उतारा और अगले ही पल एक धक्का देते हुए त्रिशा को खुद से दूर कर दिया, जिसके साथ ही उन दो कांस्टेबल ने त्रिशा के दोनों हाथ पकड़ लिए। त्रिशा रोती बिलकती हुई समर्थ की तरफ देख रही थी। वहीं समर्थ ने मुड़ते हुए जानवी की तरफ देखा। शायद उसी का चेहरा था जिसे देखकर फिलहाल वो त्रिशा से नफरत कर सकता था। जानवी भी रो रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था त्रिशा को जेल भेजना। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो चुका था। त्रिशा की वो रोती आवाज़ बाहर पुलिस की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ खत्म हो चुकी थी। समर्थ बेहाल होता हुआ सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। वो कल्याण सिंह और रजत के सामने अपनी बेहाली नहीं दिखाना चाहता था। कल्याण सिंह जल्दी से चलकर समर्थ के पास आए और सोफे पर उसके बगल में बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, काश मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता तो त्रिशा और तुम्हारी करीबी और ज्यादा नहीं बढ़ती और तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आज हो रही है। समर्थ बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए कल्याण सिंह के सीने से लिपट गया। कल्याण सिंह ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि समर्थ को रोता हुआ देखकर उनका दिल भी भारी हो चुका था। वहीं जानवी की नज़रें अमर के हाथ पर टिकी थीं। पता नहीं अमर के हाथों पर कौन सा ग्रहण लग चुका था कि बार बार उसके हाथों पर ही चोट लग रही थी और उसकी पुरानी चोट भरने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं अमर ने भी जानवी के बेचैन चेहरे को देखा, पर अगले ही पल मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए और बोला, बच्चा इतनी शिद्दत से क्या देख रही हो? मेरे हाथ की चोट इतनी भी गहरी नहीं है। जितने जख्म तुमने इन दिनों में मेरे दिल पर दिए हैं, तो इस मामूली से जख्म की फिक्र छोड़कर तुम्हें एक बार मेरे दिल के हाल का भी ख्याल करना चाहिए। जानवी ने गिरने के डर से अपने दोनों हाथ अमर के गले में बांध लिए थे और फिर अपनी घबराई हुई नज़रों से अमर के चेहरे को देखते हुए बोली, आप इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कैसे नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? और आपको शर्म नहीं आ रही है मुझे सबके सामने उठाकर ले जाते हुए? ऊपर से आपके हाथ पर चोट लगी हुई है, आप कैसे मुझे? जानवी की बात बीच में अधूरी रह चुकी थी, क्योंकि अमर ने झुकते हुए उसके उन मुलायम होठों को धीरे से चूम लिया था। और ये महसूस कर जानवी की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। उसकी आंखें हैरानी में और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गईं। अमर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा बेशर्मी कर सकता हूँ। जानवी में अब एक भी और लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी भारी पलकों को झुका लिया था। तब तक वे दोनों अपने कमरे के सामने पहुंच चुके थे। अमर ने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर जाते हुए जानवी को बेड पर बैठा दिया। अगले ही पल वो मुड़कर वापस आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब जाकर उसने सुकून की सांस ली थी। वो अब अपनी प्यारी सी बीवी के साथ बैठकर घंटों बातें कर सकता था और तो और उसे पिछले दिनों की शिकायतें बता सकता था, जो वो कल्याण सिंह और रजत के सामने नहीं बोल पा रहा था। जानवी उसे बहुत जल्दबाजी में रावत मेंशन ले आई थी, इस वजह से फार्म हाउस पर उन्हें आपस में बात करने का मौका तक नहीं मिला। अमर जानवी के पास आकर बैठा और फिर उसका चेहरा अपने एक हाथ से थामते हुए बोला, बच्चा तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी उस बहन को कुछ हुआ है। वो उसकी करतूत है, उसने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। जानवी ने अमर की आंखों में देखा, कैसे अमर ने पल भर में ये पहचान लिया था कि इन सब का दोष भी जानवी अपने ऊपर ही लेने वाली है, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। अमर ने आगे बढ़ते हुए आहिस्ता से उसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए कहा, बच्चा, अब तुम्हें चाहे कोई कितना भी कमजोर बोले, तुमने बचपन से ट्रॉमा झेला है, उसके बावजूद तुम बहुत स्ट्रांग हो। अक्सर जिस इंसान ने ट्रॉमा झेला होता है, वो सामने वाले की तकलीफ कभी नहीं समझता है, बस अपने ही दर्द का रोना रोता रहता है। पर तुमने ऐसा नहीं किया है जान। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।